अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार कर रहे हैं। जीवन में यदि हमारे वास्तव में अपने जीवन को अच्छा बनाने के विचार हैं तो उन विचारों को हम निरंतर करते हैं, क्योंकि विचारों की निरंतरता से वे विचार दृढ़ होते हैं। और इतना ही नहीं, उन विचारों की दृढ़ता होने के बाद वे विचार हमारे आचरण में परिवर्तित होने लगते हैं। अभी हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने का विचार तो करते हैं, लेकिन उन विचारों को हम निरंतरता नहीं दे पाते। थोड़ी देर को विचार मन में आता है और फिर उसके बाद संसार की दूसरी कोई आसक्ति हमें घेर लेती है और वो जो विचार हमारे जीवन को अच्छा बनाने वाला है वो वहीं के वहीं और समाप्त हो जाता है। फिर कभी मन में आता है और फिर हम सोच लेते हैं और सोच करके फिर छोड़ देते हैं। यदि हम उसे निरंतरता दें और वो दृढ़ हो जाए तो हमारे आचरण का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए आचार्य भगवंतों ने दो प्रक्रियाएं रखी हैं, एक अनुप्रेक्षा की प्रक्रिया और एक सामायिक की प्रक्रिया। सामायिक और अनुप्रेक्षा, इन दोनों के द्वारा हम अपने विचारों को निरंतरता दे सकते हैं और इतना ही नहीं, उन विचारों के अनुरूप अपने आचरण को परिवर्तित भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पिछले दिनों सामायिक की प्रक्रिया पर विचार करना शुरू किया था। सामायिक के मायने हैं समता की साधना। सामायिक के मायने हैं तमाम विषमताओं के बीच भी और हम समता रख सकें। सामायिक के मायने हैं घृणा से मैत्री की यात्रा। सामायिक के मायने हैं ईर्ष्या से गुणग्राहिता की यात्रा। अगर हम इस तरह से इस सामायिक की प्रक्रिया को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें तो ये सामायिक की प्रक्रिया हमारे विचारों में दृढ़ता लाकर हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें प्रेरित करेगी। होता क्या है, हमें संसार जैसा दिखाई पड़ता है वैसा हम मान लेते हैं कि यही सच्चाई है, पर सच्चाई इन दो आंखों से पूरी नहीं दिखती। जैसे अपन खुद देखते हैं कि जब अपना मन उदास हो तो सारी चीजें, सारे घर की चीजें, जो कुछ भी हम देखते हैं वो सब कैसा लगने लगता है, बेमानी मानते हैं। जब हमारा मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है, तो सारी चीजें बहुत अनुकूल और बहुत अच्छी मालूम पड़ती है। इसके मायने क्या है, इसके मायने ये है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण, जैसा हमारा सोच हम बना लेते हैं, ठीक वैसा ही फिर हमारा आचरण हम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वास्तविकता को देखें। इन दो आंखों से हम वास्तविकता को नहीं देखते। आकाश नीला है, आकाश ना कभी हंसता है ना रोता है, लेकिन हमें जब हमारा मन रो रहा होता तो आकाश भी रोता हुआ मालूम पड़ता, और जब हमारा मन प्रसन्न होता तो आकाश भी बहुत प्रसन्न मालूम होता, जबकि आकाश तो जैसा है वैसा का वैसा ही। तो कभी कभी हमें एक ऐसी दृष्टि से विचार करना चाहिए जब हम अपने राग द्वेष को एक तरफ रख सकें। अभी हम सुबह से शाम तक चीजों के बारे में, व्यक्ति के बारे में, किसी भी घटना के बारे में, तीन ही चीजें हैं हमारे सामने, व्यक्ति है, वस्तु है, कोई घटना है, इन तीनों के बारे में हम अपने अंदर में जैसा भाव रखते हैं, जैसी हमारे मन में धारणा होती है वैसा ही हम सोचते हैं। वास्तव में वो घटना कैसी है, वस्तु कैसी है, व्यक्ति कैसा है, इसकी ओरिजिनलिटी से हम और विमुख हो जाते हैं। हमें इसलिए अभ्यास करना चाहिए कि सुबह शाम बैठ करके हम जीवन की, जगत की, अपने शरीर की वास्तविकता को समझें। ये जो जीवन, जगत और शरीर की वास्तविकता को समझने की प्रक्रिया है वही सामायिक है, जिसमें कि हम जिन चीजों में हम उलझे रहते हैं उनकी वास्तविकता नहीं समझ पाते। उन चीजों से हम थोड़े से बाहर खड़े होकर के देखें, तब फिर मालूम पड़ता है क्या इसकी वास्तविकता तो ये है। जब तक हम उन चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि अपन आज देख रहे हैं ना कि जो लोग सत्ता में नहीं है वे सत्ता में होने वाली खामियां बता पाएंगे अच्छे से, लेकिन जो सत्ता में चले जाएं बेखुद तो फिर उनको वो खामी नहीं मालूम है ना। इसी तरह हर एक काम के बारे में देखें अपन, जिस काम को हम करने लगते हैं उसमें क्या अच्छा और क्या बुरा है हम नहीं सोचना चाहते, हमारा राग उसमें जुड़ जाता है। मैं इसके लिए एक उदाहरण दिया करता हूं हमेशा कि जैसे अपन बाजार में जाएं और अपन को पेन खरीदना है तो पेन वाले से कहते हैं कि पेन दिखाइएगा, वो डिफरेंट वैरायटीज हमें दिखाता है, देखिए ये इसका कलर ठीक नहीं है, इसका ये ढक्कन ठीक नहीं है, इसका ये शेप अच्छा नहीं लग रहा, इसका कलर अच्छा नहीं, बहुत सारी बातें करेंगे अपन उसके बारे में कि ये ऐसा वैसा, और फिर बाद में खरीद लिया ये जो अपन को पसंद आए। अब अपन दे करके चले, रस्ते मिल जाए कोई मित्र और वो कहे कहाँ से आ रहे हैं, पेन खरीदने गया था, पेन दिखाएं कैसा, देखता हूँ अरे उतना मज़ेदार नहीं, अपन क्या कहते हैं रहने दो ठीक है हमारा, अब नहीं सुनना चाहते। अभी हम एनालिसिस कर रहे थे उसकी दुकान पर कि ये ऐसा और ये वैसा, लेकिन अब मैंने खरीद लिया है, अब मैं उसको राग की दृष्टि से ही देखूंगा, अब मैं बिल्कुल एनालिटिकल दृष्टिकोण से नहीं देखूंगा। इसी तरह संसार में हम सारी चीजों को अपने द्वेष से या अपने राग के वशीभूत होकर के देखते हैं। सामायिक सुबह शाम हमें ये सिखाती है कि ठीक है आपने अपने राग द्वेष से चीजों की स्थिति को जाना देखा, जीवन और जगत को थोड़ा सा कभी कभार बैठ के आधे घंटे 10 मिनट और कभी इस संसार की इस जीवन की वास्तविकता के बारे में भी तो विचार करो, एक ऐसी आंख से देखना शुरू करो जिसमें कि वास्तविकता दिखाई पड़े, वो आंख देती है सामायिक। तब आचार्य भगवंत कहते हैं कि हम कैसा विचार करें, अभी तो हम संसार के बारे में विचार करते हैं कि ये संसार ही तो है जो कि हमें शरण दिए हुए है, ये संसार बड़ा अच्छा है मुझे सुख भी देने वाला है, इस संसार तो कभी नष्ट होने वाला नहीं, ये तो हमेशा रहेगा शाश्वत है, ऐसा हम संसार के बारे में और अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत तो क्या कह रहे हैं, इसकी वास्तविकता कुछ और है। क्या विचार करना अपने सुबह शाम बैठ करके सामायिक के दौरान पांचों पापों से मुक्त होकर के थोड़ी देर क्या विचार करना, अशरण अशुभ अनित्यम दुख मनात्मान माओ सामी भवम मोक्षस्तद विपरीतात् एति ध्यायन्तु सामयिके। जब हम तैयारी करें किस बात की, वास्तविकता को जानने की, जब हम पापों से बचकर और अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करना चाहें सुबह शाम बैठ करके, तब उस समय क्या विचार करें, ये संसार कैसा है और उससे विपरीत कोई एक ऐसी अवस्था है जिसे हम मुक्ति कहते हैं, उसका अपना स्वभाव कैसा है। कह रहे हैं अशरण, यहां इस संसार में मैं सोचता हूं कि ये व्यक्ति मेरी मदद करेगा, ये सहायता देगा, हम देखते हैं कि या तो वही विदा ले लेता है, या कि जब हम असहाय होते हैं तब सोचते जरूर हैं कि ये हमारे लिए शरण देगा, ये सहारा देगा, लेकिन सामने वाला भी उतना ही असहाय खड़ा हो जाता है। एक राजा भी अपनी सारी संपत्ति सारा वैभव जोड़ करके रख ले अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जब मृत्यु आती है तो सब जो सगे संबंधी हैं वे भी हाथ बांधे सिर नीचा किए हुए चुपचाप देखते खड़े रह जाते हैं, और जाने वाला विदा ले लेता है। कोई है जो समय ये कह सके कि नहीं मैं तुम्हें बचा सकता हूं, सारे उपाय किए जा सकते हैं बचाने के, लेकिन इसके बाद भी कोई बचा नहीं पाता है, फिर भी हम इस संसार में शरण ढूंढते हैं कि शायद कोई हो जो हमारी रक्षा कर सके। यहां पर कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, सिर्फ एक है जो हमारी रक्षा कर सकता है, हमारे अपने परिणाम, और कोई नहीं। हम अच्छे भाव करें तो हमारी आत्मा सुरक्षित होगी, और हम अगर मिथ्या भाव करें बुरे विचार करें तो हमारी आत्मा असुरक्षित है ही संसार में। संसार बढ़ा लेना ही असुरक्षा है, और संसार घटते चले जाना यही सबसे बड़ी सुरक्षा है। भगवान के चरणों में हम अगर चाहें तो धर्म की शरण ले सकते हैं अपने परिणामों को अच्छा बनाने के लिए, और हमारे परिणाम अच्छे बनेंगे वही हमारे लिए शरण, और इस संसार में शरण कोई भी नहीं है। अपन अगर देखें, गौर से देखें, एक माँ भी अपेक्षा रखती है, पिता भी अपेक्षा रखते हैं अपने बच्चों से कि वे हमें जीवन के अंत में सहायता करेंगे, हमारी मदद करेंगे। आज लोग कह रहे थे कि आज पेरेंट्स डे है। हाँ, ऐसे ऐसे कई निकलते हैं, फ्रेंड्स डे, वैलेंटाइन डे, आज आज जैसे पेरेंट्स डे, ये सब कहां से आया? विदेश से आया, क्योंकि वहां पर रोज तो प्रेम है ही नहीं आपस में, इसलिए एक दिन प्रेम का तय करना पड़ा। रोज तो घृणा ही है, इसलिए एक दिन मैत्री का तय करना पड़ा। वहां तो माता पिता को कभी बच्चों से बात करने की फुर्सत ही नहीं, इसलिए आज पेरेंट्स डे है, चलो भाई मिल लो, माता पिता मिल लेंगे आज बच्चों से। अपने यहां तो वो कल्चर ही नहीं है, अपने यहां तो ये हमेशा ही साथ में है। लेकिन इसके बाद भी वास्तविकता क्या है हमारे यहां, हमारी संस्कृति में, कि ये सब होने के बाद भी ये हमारे लिए शरण नहीं दे सकते हैं। शरण तो इनके माध्यम से हम अपने परिणाम संभालें, तो हमारे लिए हमारे संभले हुए परिणाम ही शरण हो सकते हैं। क्या सुबह शाम बैठ करके ऐसा विचार नहीं कर सकते? और फिर अगर हम ऐसा विचार करेंगे तो ये जो शिकायत है वो खत्म हो जाएगी। जो हमारी हम सोच लेते हैं ना कि ये हमारी मदद करेंगे, हमारी सहायता करेंगे, फिर नहीं कर पाते तो कैसा लगता है, कितनी शिकायत से भर जाते हैं अपन अपने लोगों से जिनको अपना मानते हैं। तो कहते हैं जब कोई शरण दे ही नहीं सकता यहां पर, कितनी शरण दे सकता बताइएगा? बेटा जो है औषधि दे सकता है, बेटा सांस तो नहीं दे सकता। सांसें तो हमारी अपनी है, हम कितना ही मान लें कि हमारा सगा है और हमारी सहायता करेगा, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हैं। वो हमें औषधि दे सकता है, हमें भोजन, भूखे हैं हम तो भोजन करा सकता है, हॉस्पिटलाइज कर सकता है, हमें धर्म की दो बातें सुना सकता है, लेकिन अपने परिणाम तो हमें ही संभालना पड़ेगा। तो हम क्यों नहीं फिर सुबह शाम बैठकर इस बात का विचार करें कि व्यर्थ ही मैं दूसरे से अपेक्षा रखता हूं कि ये मेरी मदद करेगा, मैं व्यर्थ ही जब मदद नहीं मिलती तो उससे शिकायत करता हूं। सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं, कहां तक कोई हमारी मदद करेगा? हमें जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी कोई कैसे मदद करेगा? जो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता उसकी कोई क्या सुरक्षा करेगा? ऐसा विचार यदि, शरण कहीं और खोजने की आवश्यकता नहीं है, शरण पंच परमेश जी की है या कि स्वयं अपने आत्मा की शरण, ये विचार हमारे भीतर प्रगाढ़ होता जाए। और कोई इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे विड्रॉ ले लें, आज जाएं और सबसे कह दें कि कोई हमारा नहीं है, कोई हमारे लिए शरण नहीं है, तुम सब बाहर हो, हम भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। नहीं, हम इस वास्तविकता को समझ करके जिएंगे तो और आनंदित होकर के जिएंगे। अभी तो हम अपनी अपेक्षाएं रख करके जीते हैं और अपेक्षाएं पूरी हो जाती हैं तब भी धन्यवाद देने का मन नहीं होता, और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो गिला शिकवा शिकायत करने का मन होता। तो अगर हमारे अंदर से ये भाव निकल जावे कि मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, हाँ सबकी मदद करने में तैयार हूं, मगर मुझे किसी की मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कोई कितनी मदद कर सकता है, कोई कितनी मेरी सुरक्षा कर सकता है, मैं ही अपने आप को संभाले रहूं और किसी और के संभालने में मैं निमित्त बनूं तो बन सकता हूं, कोई और मेरे संभालने में निमित्त बने तो बन सकता, पर संभालना मुझे अपने को ही पड़ेगा, सुरक्षा मुझे अपनी करनी पड़ेगी, और कोई यहां पर सुरक्षा करने वाला नहीं। अशरण, अशुभ, संसार को अशुभ कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं अशुभ? क्योंकि यहां दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मजा ये है, यहां हम जिसको अपना मानते हैं वही एक दिन पराया हो जाता है। यहां जिस चीज में हम सुख मानते हैं उसी से हमें दुख मिलने लगता है। यहां तो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कांटे में और आटा लगा करके और मछली के लिए फंसा लिया जाता है। लगता है कि आटा है, खाने की चीज, लेकिन कांटा फंस जाता है और मछली मर जाती है, उसके मरण का कारण बनता है। अरे हम तो सोच रहे थे कि खाने पीने की चीज है, सुख मिलेगा, लेकिन यही मेरे मरण का कारण बन गया। यहां तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे बहेलिया आकर के और जाल फैलाता है और उसमें खाने की चीज चावल दिखाई पड़ रहे हैं, पक्षी आकर के, अरे वाह कितनी बढ़िया, दिखता शुभ है कि बस अच्छी चीजें मिलेंगी मुझे खाने, लेकिन जाल भी है, फंस भी जाता है। ये संसार की अशुभता है। यहां जो सुख दिखाई पड़ता है वो अल्टीमेटली मुझे दुख में लेके चला जाता है। वैसे तो है वो सुख, मुझे इंद्रियों का सुख मिलता है, पांचों इंद्रियों के विषय की सामग्री मुझे मिलती है, मुझे उसमें सुख मिलता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सावधान रहूं ये सुख मुझे अल्टीमेटली दुख में ले जाएगा। इतनी सावधानी रखूं, मैं इसको शाश्वत सुख मानने का भ्रम ना करूं, बस इतना ही। दुष्यंत कुमार को लिखना पड़ा, छोटी सी उम्र में बहुत सारी बातें लिख के चले गए वो, ऐसे लोग भी हैं उनके पास भी इस तरह के थॉट्स हो सकते हैं कि यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, चलो और यहां से चलें उम्र भर के लिए। क्या मतलब? वो तो ऐसा लगे जैसे शेरो शायरी हो, लेकिन कितना गहरा अर्थ है। यहां दरख्तों के साये में धूप लगती है, हम तो सोच रहे थे कि किसी पेड़ के नीचे छाया मिलेगी, लेकिन यहां तो पेड़ के नीचे भी उतनी ही धूप है। अर्थात यहां जो जो चीजें मैं अपने सुख के लिए जुटाता हूं उन्हीं चीजों में दुख है। अरे ये तो यहां से चलो और उम्र भर के, यहां फिर बार बार आना नहीं पड़े इस संसार में। अगर इसका ऐसा अर्थ ले लें, ये हकीकी है, ये मिजाजी नहीं है। दोनों तरह की गजल लिखी जाती है, हकीकत वाली और दूसरी सांसारिक। इसमें सांसारिकता ना देख करके अगर हम वास्तविकता देखें तो वास्तविकता तो यही है कि अशुभ है। मालूम पड़ता है कि यहां सुख है लेकिन मिलता यहां पर दुख ही है। और अपने जीवन के अनुभव से भी हम ये देखते हैं। आचार्य महाराज हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि हम शिखर जी की यात्रा ठंड के दिनों में करने जाते हैं लोग, और फिर सोचते हैं कि जुराब भी पहन लो ठंड लगेगी, कोट भी बनियान भी पहन लो, ऊपर से साल ओढ़ लो, टोपा ग्लू बंद बांध लो, हाथ में जो है हाथ पोस जो भी हो वो पहन लो, और खूब लदे फदे सवेरे से ऐसा लगता है कि कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं मेरे लिए, कितनी सुरक्षा मेरी, कितनी सुख दे रही हैं मुझे, हैं ठंड से बचा रही हैं। अब चढ़ते चले जाते हैं ऊपर, और फिर दोपहर जब 1 बजे तेज धूप में नीचे उतरने लगते हैं, पसीने पसीने सब उतार लिया है, ये भी उतार के हाथ पे लटकाए हैं, ये कहां फेंक देवे, कोई ले लेता, अब तो ये बोझ मालूम पड़ रहा। सवेरे जिस चीज में मुझे सुख मिलता था दोपहर होते ना होते वही चीज मुझे कष्ट देने, जिस रसगुल्ले को खाने में सुख मिल रहा था पहले वाले को तो दूसरे में ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन दूसरे में उतना नहीं मिलता, तीसरे में और कम, चौथे में और कम। एक स्थिति बनती है कि फिर उसके बाद कहते कि टू है ना, बस अब नहीं चाहिए, क्यों अच्छी चीजें ले लो और ले लो, अब नहीं चाहिए, अब शाम को देखेंगे, सुबह कल देखेंगे, अभी तो नहीं चाहिए। इसका मतलब अभी अगर वो वास्तव में सुख देती थी तो लास्ट मोमेंट तक सुख देना चाहिए था उसको, लेकिन उसी में से दुख निकलने लगा। जिस चीज में से थोड़ी देर पहले सुख महसूस होता था उसी चीज में ये वास्तविकता समझ में आ जावे, फिर आराम से आप उन चीजों का उपयोग करें, फिर उसमें गाफिल नहीं होंगे अपन। अपन वास्तविकता जान लेते हैं तब फिर हम उनका आनंद लेते हैं कि ठीक है चीजों तो इनमें सुख थोड़ी मिलेगा, सुख दुख का एहसास तो मेरे अपने परिणामों से होता है, चीजें क्या सुख देंगी। जब तक मुझे साता का उदय है तब तक मुझे ये चीज सुख देती है, मेरे इस पर असाता का उदय आ जाता है तो यही चीज दुख देने लगती है। मैं व्यर्थ ही चीजों में सुख दुख मान करके और यहां पर अपना संसार बढ़ाता हूं, ये सोच अगर हमारा डेवलप हो जाए तो देखिएगा हम ऐसा विचार सुबह शाम कर सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एटीट्यूड चेंज होने पर सब कुछ चेंज हो गया, ये ध्यान रखना। आप वैसे ही रसगुल्ले खाते रहेंगे लेकिन वास्तविकता जान करके कह रहे सुख इसमें नहीं है, ये तो थोड़ी देर के बाद इसी में दुख मिलने लगेगा, ज्यादा आशक्त होके क्यों खाओ, पेट भरने के लिए खाना है, खत्म। नहीं अब नहीं मिलेगा तो दुख, और ज्यादा नहीं मिला तो दुख, कम मिले तो दुख, क्यों हम इस तरह उन चीजों में सुख का भ्रम पाल लें और फिर जब उनसे दुख मिलने लगे तो दुखी हो जाएं। कांच की नजाकत इसमें है कि वो गिरे और टूट जाए, वरना वो कांच क्या, वो तो पत्थर हो गया, उसकी तासीर ही ये है। लेकिन ऐसा जानते हुए भी जो हमारे हाथ से या किसी और के हाथ से हमारा कोई कांच का सामान गिर करके टूट जाता है तो बड़े दुखी होते, क्यों हो हम दुखी, वो तो उतनी ही उसकी कहना चाहिए सीमा थी उसकी, हम जानते हैं कि इतनी देरी इसमें सुख मिलेगा उसके बाद तो इसी से दुख मिलने लगेगा, इसी के टूट जाने से, तो फिर हम दुखी क्यों और इसके मिल जाने पर सुखी क्यों। बस ये उपयोग करने की चीज है, मैंने उपयोग कर लिया, चाहे व्यक्ति के बारे में हो, चाहे वस्तु के बारे में हो, चाहे किसी घटना विशेष के बारे में जो हमें सुख दुख का एहसास कराने वाली घटनाएं हैं, उनको हम सोचें कि उनकी वास्तविकता को जान लें। इस संसार में जो कुछ जहां से भी सुख मालूम पड़ता वहीं से दुख भी निकलता है, मुझे ये सावधानी रखनी है और इस सुख दुख के बीच अपनी समता बनाए रखनी है। ये साधना सामायिक की साधना। इससे बहुत फॉर्मेबिलिटी आती है विचारों में और आचरण में भी बहुत दृढ़ता आती है। अशरण, अशुभ, अनित्यम, यहां सब फ्राइबल है। ए मैन कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन ए रिवर, लिखना पड़ा किसी को कि एक व्यक्ति एक नदी में दूसरी बार पैर नहीं रख सकता। मतलब हमने तो अभी भी रखा था, फिर से रखेंगे? अब वो नदी नहीं रही, वो आप नहीं रहे, इतना क्षण भंगुर है सब। क्योंकि नदी में जिस पानी में आपने पैर रखा था वो पानी तो बहुत आगे निकल गया और वो जो आप हैं आपका भी वो क्षण व्यतीत हो गया। कितना फ्राइबल है हर चीज, कितनी एक क्षण के बाद परिवर्तनशील है, कितनी क्षण भंगुर है चीज। लेकिन हम उन चीजों को शाश्वत बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि ये सब चीजें, इनकी जो बदलती हुई पर्यायें हैं वो शाश्वत नहीं है। हम ही तो देखो, भले ही हम वही के वही हैं लेकिन कितने चेंजेस हमारे भीतर हो गए, कितने हम परिवर्तित होते चले जाते हैं। बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमारे शारीरिक रूप से परिवर्तन, हमारे अंदर वैचारिक परिवर्तन, हमारे अंदर भावनात्मक परिवर्तन, कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं। हम वो कहाँ रह जाते हैं, यहाँ तक कि हम देखें कि एक क्षण पहले हम जो थे वो अगले क्षण नहीं रहे, बदल जाता है, सब कुछ बदल जाता है। इतना परिवर्तनशील ये जगत है और फिर मैं इसमें शाश्वत की अपेक्षा रखना, मैं चीजों को हमेशा बनाए रखना चाहता हूं, मैं कितने ही कोशिश करूं वे तो बदल जाती, पुरानी तो होनी पड़ेगी। मैं कल जो चीज लेके आया था आज वो पुरानी होगी। मैं ज्यों की त्यों उस चीज को बनाए रखने की क्यों व्यर्थ ही चेष्टा करता हूं। अपन देखें और इस तरह चीजों को क्षणभंगुर मान लें, जन्म होते ही उन चीजों के नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। उत्पन्न होते ही बेटा जो आज पैदा हुआ, जिसके पैदा होने में हर्षित हैं हम, धीरे धीरे करके रोज रोज एक सांस अपनी व्यतीत करके मरण की तरफ जा रहा है, ये दिखाई नहीं पड़ता। ये दिखाई पड़ जाए तब फिर हर्ष भी नहीं होगा और विषाद भी नहीं होगा, दोनों चीजें। हम एक्साइट भी नहीं होंगे और डिप्रेस भी नहीं होंगे। ये विचार इसलिए नहीं है कि ऐसा मत सोचना आप कि जैसे ही जन्म हुआ तो मरण का विचार करके दुखी हो जाओ, नहीं। जन्म हुआ है और एक दिन मरण भी होगा और दोनों के बीच का जीवन है वो मुझे जीना। जिसे भी हम सलाह दें इस तरह से सलाह दें कि जन्म में एक्साइट मत हो ताकि मरण में डिप्रेस ना होना पड़े, मरण में हमें पेन फील ना हो। जन्म में अगर हम बहुत सुखी थे तो जरूर हम मरने की बात से दुखी होंगे। हर आदमी, किसी से भी अगर मरने की बात करो फौरन, और ये बातें मत करो, उनसे अच्छी नहीं लगती ये बातें, मरण वरण की बात मत करो। अच्छा, बहुत अच्छा, तो शाश्वत हो जाओ ना। अगर मरण की बात नहीं अच्छी लगती तो जन्म मरण से पार होने की प्रक्रिया अपना ले, बस हो गया काम। लेकिन नहीं, मरना भी है पर मरण की बात मत करो। हम क्यों नहीं इस चीज से ये शिक्षा ले लेते हैं कि यहां ये पर्याय शाश्वत नहीं है पर मैं शाश्वत, मुझे अपनी उस शाश्वतता का विचार करना है, उस शाश्वतता को प्राप्त करना है। मैं इस देह की शाश्वतता का क्या विचार करूं, इस देह के लिए जो जो संबंध निर्धारित किए गए हैं उनकी भी शाश्वतता कहां हो सकती है, तो सब प्राइवेट है, बहुत क्षणभंगुर है, आज है कल खत्म हो जाएंगे। आज जिसे मित्र मानते हैं कल वो शत्रु मानना पड़ेगा, पिछले जन्म में हो सकता है जो शत्रु हो वो आज हमारा सगा भाई की तरह पैदा हो सकता है। यहां ये सब इतना क्षणभंगुर है लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ जो शाश्वत है वो हमें दिखाई पड़ता रहे, तब फिर हमारी दृष्टि इस क्षणभंगुर में ना सुख मानेगी और ना दुख मानेगी। हम करना तो यही चाह रहे हैं, अभ्यास तो यही करना चाह रहे हैं, क्योंकि सुबह से शाम तक सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं। थोड़े से भी क्षण नहीं है जिनमें हम सुख दुख से मुक्त होकर के ठीक, ना सुख है ना दुख है, एक एक उदासीन उदासीन, लेकिन ऐसी उदासीन नहीं कि कहना चाहिए जैसे लोग कहते हैं हम तो संसार से उदासीन हो गए, कर सब रहे हैं लेकिन कहेंगे कि उदासीन हो गए। उदासीनता मतलब अत्यंत प्रसन्न चित्त, उदासीनता का मतलब ये नहीं कि गमगीन होकर के कोने में बैठ गए, नहीं, उदासीन हो गए अर्थात अब हर्ष विषाद नहीं है लेकिन प्रसन्नता है। खुशी और प्रसन्नता में अंतर पूछ लिया था किसी ने एक बार मेरे से, मैं बहुत मुश्किल में पड़ गया। उर्दू शब्द है खुशी और प्रसन्नता तो संस्कृत का शब्द है, लेकिन दोनों में सिनोनिम्स होते हुए भी अर्थ का बहुत गंभीर है। प्रसन्नता वो है जो कि जब हम राग द्वेष से ऊपर उठ करके और अंतरंग आनंद से भरे होते हैं उसके लिए प्रसन्नता शब्द है, और खुशी हमारे मन की चीजें मिल जाने पर होने वाले हर्ष का नाम खुशी है। प्रसन्नता हम हमेशा प्राप्त करें, लेकिन हर्ष और विषाद से रहित होने का प्रयत्न करें, वही सामायिक की साधना है। अशरण अशुभ अनित्यम दुख अनात्मा, दो चीजें और हैं। गौर से देखें कि यहां पर मुझे सिवाय दुख के और क्या मिला। ईमानदारी से जिन जिन चीजों को मैंने अपने सुख के लिए जोड़ा, उनसे मुझे सुख नहीं मिला बल्कि दुख ही मिला। मेरा भ्रम था कि मैं उन चीजों में सुख मानता था, और इतना ही नहीं, ये सब चीजें जिनको मैं अपना मानता हूं वे बिल्कुल मेरे से भिन्न हैं, मेरे से पृथक हैं और पराई हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये पराया है शरीर, इसलिए आज जाकर के उसको उठा करके फेंकाओ कहीं। वो जो हम जिनको हम अपना मानते हैं उनसे कह दो कि आप हमारे पराए हैं, हम सुन के आए आज महाराज जी का प्रवचन, उसमें कहा है कि सब पराए हैं, ऐसा नहीं कहे। आप गौर से सुने उस चीज को, उसके अर्थ को। मेरे अपने आत्मा का और इनका जो पर वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उन सब का क्या संबंध है, इसकी वास्तविकता को जान ले। और संबंधों की वास्तविकता जान लेने के बाद फिर अपने पराये के भेदभाव से हम ऊपर उठ जाते हैं। जो अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठ जाए वो वास्तव में साधना है। किसी को पराया कह देना ये तो बहुत आसान सी चीज है, कल तक अपना कहते थे आज पराया कह दिए। नहीं, अपने पराये से ऊपर, यहां सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, और वास्तव में देखा जाए तो कोई अपना भी नहीं है क्योंकि कोई पराया भी नहीं है। कोई शत्रु नहीं है इसलिए कोई मित्र भी नहीं है, सभी मित्र हैं। ये अप्रोच कहना ये चाहिए कि अनात्मा, सब अपने आत्मा से भिन्न है, यानी सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी है, सबकी अपनी, कहना चाहिए अलग अलग, सबकी अपनी सत्ता है, अस्मिता है। हम दूसरे के साथ रह सकते हैं लेकिन दूसरे के जीवन में कोई परिवर्तन जब तक वो ना करना चाहे तब तक नहीं कर सकते। ये सोच हमारा डेवलप, लेकिन यहां तो हम हर आदमी को अपने अनुसार परिवर्तित करना चाहते हैं। सारा झगड़ा संसार का इतना ही है। क्वेश्चन आते हैं हमारे घर में, हमारी तो रुचि है धर्म में, परिवार के और लोगों की नहीं है, उपाय बताओ सरल सा कि जिससे सबकी रुचि हो जाए। अच्छा, आप परिवर्तन अपने आप का कर लेंगे कि उनका भी कर सकेंगे, सामने वाले का, जब तक वो तैयार नहीं हो। जब हमसे पृथक है उसे अपनी तरह से जीवन जीने की सुविधा मिली है, उसे अपनी तरह से जीवन जीने दें। आप अपने जीवन को अपनी तरह से जिएं, दूसरे के जीवन में इंटरफियर ना करें और ना ही दूसरे हमारे जीवन में इंटरफियर करें। जब हम दूसरे के द्वारा हमारे जीवन में होने वाले इंटरफियर को पसंद नहीं करते तब हम दूसरे के जीवन में क्यों दखलंदाजी करते हैं? ये अप्रोच होना चाहिए। वो अपने तरह से जिए, हम अपने, अगर हम उसके तरह से जीने में सहमत हैं तो उसके साथ खड़े हो जाएं, और अगर हम उसके तरह जीने में सहमत नहीं हैं तो भी हम उसके साथ खड़े तो हों पर कोई हर्ष विषाद ना करें। अभी तो हम बहुत जल्दी, हमारे मन के अनुकूल वस्तु और व्यक्ति मिलता है तो हम हर्षित होकर के उसी में लीन हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, और या कि हमारे प्रतिकूल सारी स्थितियां बनती हैं, व्यक्ति और वस्तु हमारे प्रतिकूल होती है, हम विषाद से घिर करके अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। दोनों स्थितियां हमारे लिए घातक हैं, चाहे हम विषाद से घिर कर अपना जीवन बिताएं या कि हम गाफिल होकर के अपना जीवन की बस सब कुछ अच्छा चल रहा है मेरे तो जीवन में ऐसा जीवन व्यतीत कर दें। नहीं, हम झांक करके देखें अपने भीतर की वास्तविकता क्या है। एक छोटा सा उदाहरण जिसे मैं हमेशा सुनाता हूं, मैं आपको सुना रहा हूं क्योंकि उससे स्थिति क्लियर हो जाती कि कैसे जी सकते हैं अपन। ऐसे क्षण भी आ सकते हैं क्या जीने के, जीवन के? बहुत मुश्किल है, मैं तो आपसे कह दे रहा हूं, पर मेरे जीवन में भी वैसे क्षण आए, इसकी मैं भी कोशिश में रहता हूं, आप भी कोशिश करें, पर ये विरले ही लोगों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। इतना कहना चाहिए व्यक्ति समतावान हो सकता है, इतना संतोषी हो सकता है इस प्रक्रिया से, क्योंकि सामायिक तो समता की साधना है। विषमताओं के बीच भी हर्ष विषाद नहीं करने, सुख दुख के बीच भी शांत बने रहने की प्रक्रिया, और बहुत कठिन प्रक्रिया है। पर कोशिश करने से हम उसको आसान कर सकते हैं। इसलिए बैठते हैं अपन रोज रोज, कई बार तो मुझे ही लगने लगता है जब मैं वहां से यहां चल करके आता हूं, आज किस बात पे विचार करूंगा, फिर मुझे लगता है कितनी बातों पर विचार करूंगा, क्या उन बातों को मैं भी अपने जीवन में पूरा का पूरा ला पा रहा हूं, या कि जिनसे कह रहा हूं क्या वो अपने जीवन में पूरा का पूरा ला पाएंगे। फिर लगता है कि नहीं, ये जो हम आधे घंटे बैठे हैं उतनी देर तो कम से कम हमने इन सब बातों पर विचार किया और संसार के प्रबंध से बच गए, इतना ही ठीक है। बाकी कब इन सब अच्छी बातों को अपने जीवन में ला पाएंगे, उस सुनहरे दिन की सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं अपने जीवन में, विचार तो करें। वो एक उदाहरण, एक माँ के दो बेटे बहुत मुश्किल से तो उसके यहाँ पैदा हुए थे और फिर बड़े सारे हो गए, 20-20 साल के, दोनों जुड़वा बेटे थे, बहुत प्यार था माता पिता को उनसे। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे अभी भी सुनने में आया है, बहुत वर्षों के बाद तो यहाँ पर पानी बरसा राजस्थान के अंदर, और खूब खूब पानी बरसा और कहीं कहीं पर लोग एंजॉय करने गए तो अपने प्राणों से भी चले गए। किसी के एक ही बेटा था और वो ही पानी में डूब करके मर गया, ऐसी कितनी कितनी सारी खबरें सुनने मिली। सवाल ये है, ये तो सब संसार में ऐसा घटित होता रहता है, जो हमारे साथ व्यतीत होता है तब हम देखें, दूसरे के साथ व्यतीत होता है तब तो हम उसको ढाढ़स बनाते हैं, तब तो हम उसको धैर्य बनाते चले जाते हैं कि देखो ये तो होता ही लगा ही हुआ। लेकिन जब वो सब चीजें हमारे साथ भी घटित हों तब हम अपने को कैसे धैर्य बनाएं, ये साधना है। वो माँ के दोनों बेटे नदी में नहाने गए, माँ से कह के गए थे कि माँ नदी में नहा के आते हैं अभी, लेकिन माँ इधर रसोई बना रही है, पिता भी लौट करके आने का कह गए, पिता भी नहीं लौटे हैं और बेटे भी नहीं लौटे हैं, माँ रास्ता देख रही है, रोटी बनाती जा रही है, 11 बज गए हैं, कह तो गए थे सुबेरे के 6 बजे के कि बस 9 बजे तक लौट के आ जाएंगे नहा धो करके, फिर बस खाने में बैठेंगे सब। लेकिन थोड़ी देर में, और बाहर शोरगुल होता है और कोई पुकार रहा है, माँ कहती कि आ जाओ ना, भीतर दरवाजे खुले हुए हैं, हम तो इंतजार ही कर रहे हैं। वो सोचती है कि बेटे आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कपड़ों में लिपटे हुए दो शव लेकर के भीतर प्रवेश करते हैं। माँ वहीं बैठी है, चकित है, क्या हुआ, पानी में दोनों डूब गए और उनका प्राणांत हो। अब क्या करे, वो बेहल होकर के अपने प्राण दे दे क्या, नहीं लगता तो उस समय ऐसे ही इतने संवेदनशील क्षणों में कैसा लगेगा कि बेहल हो उठे और अपना अपने प्राण भी देकर के अगर प्राण बचाए जा सके तो दे दे, लगता तो यही है उस क्षण में, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। वास्तविकता ये नहीं है, वास्तविकता इससे बहुत परे है। अब वो मां क्या करे, क्षण भर को स्तब्ध है, फिर धीरे से कहती है कि बाजू के कमरे में दोनों को लिटा दो, क्योंकि अभी इनके पिता भोजन करने आने वाले हैं, उन्हें मालूम ना पड़े। इतना साहस बहुत कठिन है, और दोनों को कमरे में बाजू के लिटाने को कह देती और सब लोग चले जाते हैं। जाने के बाद पिता आते हैं, उनको तो कुछ नहीं मालूम, ये चुपचाप जैसे ही आने की स्थिति में होते हैं, आ जाओ जल्दी से आ जाओ नहा धो लो, अरे और बेटे कहाँ गए दोनों, नहा के आते होंगे, नहाने गए, अच्छा अच्छा मैं नहा लेता हूँ, नहा धो करके और रसोई में आकर के बैठ गए, अभी तक क्यों नहीं आए, आ जाएंगे, एक बात पूछनी है आपसे मुझे। क्या बात पूछनी है, वो बाजू वाले पड़ोसी से अपन ने एक दिन वाइट वॉश करने के लिए नसैनी ली थी ना, सीढ़ी, हाँ ली तो थी, तो वो मंगाने आए थे, अब आप घर में थे नहीं, हमने बहुत तो सोचा कि आपसे बिना पूछे कैसे दे दें, पर हमने दे दी, वो बहुत जिद कर रहे थे, उनको चाहिए थी, अरे तो इसमें क्या बात है, मेरे से पूछने की क्या बात थी इसमें, वो तो उनकी चीज थी तो उनको दे दी। हाँ मैं यही पूछना चाह रही थी कि मुझे आपसे इसमें पूछने की तो कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए मैंने ठीक किया। और इतने में पूरा भोजन हो गया, बेटे नहीं लौटे अभी तक, आइएगा। आप कह रहे थे ना कि सीढ़ी दूसरे की है, वो मांगने आ गया था तो आपसे बिना पूछे जैसे मैंने उससे दे दी, ऐसे ही आइएगा। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँ। कमरे में ले जाती है, दोनों की लाश पड़ी हुई है। बेहाल मत होना, धैर्य मत खोना। हमें 20 बरस के लिए मिले थे और आज इनके लौटने की घड़ी आ गई। इन्हें मांग लिया गया वापस हमसे, हमने आपसे बिना पूछे इनको वापस दे दिया है जहां से आए थे। बहुत कठिन है ना, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है लेकिन ऐसा जीवन में हर चीज के प्रति अपन तो कहेंगे इम्पॉसिबल, लेकिन संभव है ऐसा भी। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन हम संसार के सुख दुख से पार हो जाएंगे। अभी अभी तो हमको बहुत साधना करनी पड़ेगी, अभी तो सिर्फ पूजा पाठ में ही हमने अपने आप को सीमित कर रखा। अभी तो इतनी ऊंचाई हमें छूनी है, इस पूजा पाठ से इतनी ऊंचाई तक पहुंचना है, इस वितराग भगवान के चरणों में बैठ करके यही साधना करनी है कि आपके जैसी ऐसी ही वितरागता आ जाए, ताकि हर्ष विषाद के सारे अवसर पर मैं वास्तविकता को इग्नोर ना करूं और वास्तविकता मेरे सामने रहे और उनसे मैं अपने जीवन को आसानी से जी सकूं। क्योंकि अब विषाद करने से वे लौट कर आने वाले, विषाद करने से अपने परिणाम ही संक्लेशित होंगे। एक मां अपने बेटे के दुख में दुखी होकर अपने प्राण देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन उसके दुख को एक डिग्री भी कम नहीं कर सकती। ये यहां इस संसार की वास्तविकता है। इसका हम विचार कभी कभी सुबह शाम करके देखें कि हाँ है तो ऐसा ही, तो हो सकता है कि कुछ अवसर पर हम भी थोड़ा सा संतोष और समता धारण कर सकें। इसी भावना के साथ कि हम इस संसार के हर्ष विषाद और सुख दुख के बीच थोड़ी देर तो शांति से अपना जीवन जी सकें, अच्छे से अपना जीवन जी सकें। बोले आचार्य जी, बोले क्या स्वागत मुनि। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिल दर्शन करने वाला है। जग जग ऋषियों में रचित शिखर आपिन नीता में सोता हो, अथवा शिव के निष्कंटक पथ में निष्कंटक होता हो।
Yeah. नमो का मंत्र पूरी पढ़ती, कम से कम 9 बार नमो का मंत्र पढ़ना चाहिए।
कुछ उपाय हैं जी हम चोरी साथ रविवार को जोड़कर 2 बजे मुनिश्री के सानिध्य में स्थानीय दिन द्वार सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। नरसिंह से खुद निर्वाचन के सभी भैया बहन ठीक 1:45-2 बजे प्रवचन हाल में निर्धारित स्थान पर शांति को आकर देखना है। अनुशासन मायावती ने सहयोग दे नरसिंह से भारती तक के भैया बहन अपने विद्यालय की निर्धारित वेशभूषा में विधि पूर्ण आएंगे। दिनांक 24/3 को 5:30 बजे मुनिजी के दीक्षा समारोह के संबंध में विचार विमर्श करने हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया है। समाज के सभी जनप्रिय बंधु उपस्थित होना आवश्यक है। सभी भारत से आए हुए अतिथियों का स्थानीय लोगों के समाज स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। सभी भारत आए अतिथि कमल स्टोर के मुकाबले गुरु है ऐसी गिनती है। चारों का गुच्छा मेरे पास रखा है, यदि किसी को किसी घूमा है तो उससे ले। सभी प्रार्थना है कि महाराज साहब ने जो भोजन के बारे में बताया है, आहार क्रिया के बारे में, उसका अनुशासन करके पालन करें, उसे बिगड़ जाए।
Thank you.